आदमी दुखी क्यों होता है और ईश्वर प्राप्ति में तकलीफ क्यों होती है कि ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा मिले ऐसा ना मिले। पक्का कर लो अपने तरफ से अड़चन नहीं बनेंगे। और आप चाही सब होती है क्या? आज तक तुमने कितना कितना चाहा तो तुम्हारा चाहा सब हो गया क्या? जो चाहते वो सब होता नहीं, जितना होता है वो सब भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। फिर काय को पकड़ करो, होता है तो होता है, ठीक है नहीं तो वाह वाह। ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो ऐसा हो, ऐसा करके अपनी वासनाओं का पुतला मत बनो। आप रहो अपने ईश्वर स्वभाव में, अपने शांत सम स्वभाव, प्रयत्न करो फिर जो हो सम। इसको बोलते समत्व योगम उच्यते। ये बड़ी भारी तपस्या है। सब कुछ त्याग कर मैं भिक्षा मांग के रहूंगा, अथवा सब कुछ पाकर मैं बड़ा होकर रहूंगा, नहीं अभी जहां है मैं कौन हूं बस। और कौन पुरुष स्फुरित करता है? मेरे को बुरे विचार आते हैं, नहीं आए तो लड़ो मत उनसे। बुरे विचार आते तो ऐसा करो मत, उससे उपराम बस ईश्वर में। लेकिन ईश्वर में मन लगता नहीं, तो नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ना लगो ईश्वर में मन, ना लगो तो ना लगो। जहां ता जहां लगता है उसकी गहराई में ईश्वर है, चलो जाओ। गाय में लगा, कुत्ते में लगा, घोड़े में लगा, गधे में लगा, किस में लगा, जहाज में लगा, ड्यूटी में लगा, तो ड्यूटी में मन भगा, इधर भगा उधर भगा, तो ये भागने को जानता कौन है, किसकी सत्ता से भगते हो, ऐसा पूछो अपने आप लग जाएगा। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। एक तो मन लग गया समाधि, वो हो गया समाधि योग। लेकिन उसमें नहीं लगे तो इससे भी आसान तरीका है, चलते फिरते ज्ञान का बैटरी डाल दो मन की गाड़ी में, अविकम्प योग हो गया। मन लगे तो लगे, ना लगे तो फिर ज्ञान में विचार में शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा। श्वास अंदर गया आओ, बाहर आए तो गिनती, अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो गिनती। साधना क्यों करनी पड़ती है? कि असाधन हो गया इसलिए साधन करना पड़ता है। ईश्वर भी है हम भी हैं, फिर पाने के लिए मेहनत क्यों? ईश्वर मिलना चाहते और हम भी मिलना चाहते, फिर भी देरी क्यों? कि वो गलत तरीके से जो सच्चा मान लिया है उसको निकालने के लिए गड़बड़ करनी पड़ती। आप लोग पान मसाला खाना छोड़ दो तो आपके लिए क्या देरी है? पान मसाला जर्दा छोड़ना क्या देरी है? खाते ही नहीं है। लेकिन जो जर्दा खाने की आदत में फंसे उनके लिए जर्दा छोड़ने के लिए मेहनत है। तो साधन करते हैं लेकिन असाधन को पकड़ के रखते, भजन करते हैं लेकिन अभजन के तरफ खींचने वाली चीजों को महत्व दे देते, कहीं ये छूट न जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। काहे को फिक्र करता? मां के गर्भ में रहता है उस समय कौन था तेरा रक्षक, कौन था पोषक? मां के शरीर का पोषक कौन था? किसने रक्त वाहिनियों में रक्त बहा के नाभि के द्वारा तेरा पोषण किया है? वो प्रभु चले गए हैं क्या, सो गए हैं क्या, अथवा उसकी सत्ता से उनकी जगह थोड़ी खाली हो गई क्या, कोई दूसरा आ गया क्या, दो भगवान हो गए क्या सृष्टि में? एक अमेवा देती है। तुम्हारी बुद्धि रात को किस में सोती है पता है? अद्वैत में सोती है। अद्वैत में बुद्धि सोती तो पुष्ट होती है, और फिर द्वैत में आती तो बिखरती, फिर थक थका के अद्वैत में जाती। मां कोई नहीं, तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, मित्र अमित्र भवति। गहरी नींद में मित्र मित्र नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, अद्वैत एक सत्ता। फूलों से सजी हुई सेजा और अत्र छिटका हुआ कमरा और ललनाओं की हास्य विलासों सेवा चाकरी लेते लेते राजा सो गया है। सोने से पहले खिड़की से निहारा के एक युवक अपना कंबल बिछा कर लेट रहा है। क्या उस युवक की जिंदगी भाग्य बिचारे का। मैं भी युवराज हूं, राज्य अभिषेक हुआ और इतना राजमहल में ऐश करते करते सो रहा हूं और वो बिचारा युवक एक कंबल बिछा गया साधु पड़ा है मंदिर के प्रांगण में। सुबह हुआ वो राजा सैर करने गया। वो महात्मा भी नदी किनारे सैर करता हुआ नहा के आगे को जाना था। व्यंग में राजा ने कहा युवराज ने, क्यों महाराज महल के सामने वाले मंदिर के प्रांगण में सोए थे रात को, वही कौन महाराज? बोले हाँ महाराज, रात कैसी बीती? महाराज की चमकती आंखों ने उस युवराज के व्यंग को भांप लिया और चमकते अपने प्रातः स्फुरित होने वाले अनुभव को सुमरण करते हुए राजाधिराज महाराजाओं के बाप का बाप नंगे पैर नंगे सिर कंधे पे कंबल लिए हुए महापुरुष ने कहा, राजा रात कैसी भी थी? कुछ तो तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से बहुत बहुत बढ़िया। बोले कुछ रात मेरे जैसी और कुछ मेरे से बहुत बहुत बढ़िया, ये कैसे? बोले तुम घोड़े से नीचे उतरो तब ना, ये रहस्य समझना है तो थोड़ा नम्रता का सद्गुण तो युवराज आप में होगा ही। मजबूर कर दिया उस मायावी सुखों में उलझे हुए युवराज को सुलझे हुए युवक ने, अकिंचन युवराज ने सब कुछ वैभव इकट्ठा करके सुखी होने में भटकने वाले राजाधिराज को आत्मा में संतुष्ट होने वाले महाराज ने मजबूर कर दिया नीचे उतरने को। तल्ले पे बैठ के महाराज, राजा कैसी बीती रात? कुछ तो तुम्हारे जैसी कुछ तुम्हारे से उत्तम, इसका उत्तर सुनो। गहरी नींद में आपको पता था कि मैं राजमहल में हूं, फूलों की शया पे हूं? नहीं, वहां शया शया नहीं रहती। और मुझे वो भी पता नहीं था कि एक कंबल पर हूं और आपको वो भी पता नहीं था कि कोमल गद्दे पे हूं। गहरी नींद में सब उसी परमेश्वर की गोद में चले जाते, अद्वैत में बुद्धि सोती। गहरी नींद में कोई भेदभाव नहीं रहता है। सजावट तो तुम्हारे नकली शरीर और नकली अहम को खुश करती, असलियत में कोई फर्क नहीं है। एक सड़ी गली झोंपड़ी में गहरी नींद में पड़ा हुआ बुढ़ा और एक राजमहल में लेटा हुआ युवराज, गहरी नींद में दोनों समान पुष्ट होते। तो कुछ तुम्हारे को जितनी देर गहरी नींद आई और मेरे को आई तो हम दोनों एक थे। लेकिन तुम जब करवट लेते थे या तुम जब जगे तो तुम्हारा सुख का आश्रय था ललनाएं, फूल, सुगंध। नाक की नाली के द्वारा तुम सुख खोज रहे थे अथवा स्पर्श के द्वारा तुम सुख खोजकर भिखमंगे से हो रहे थे, बुरा मत मानना। और मैं ओम सच्चिदानंद, ओम चैतन्य देव, ओम आत्मदेव, तो मैं तो बीच बीच में ईश्वर के चिंतन में आत्मरसपान करता था और तुम विषय विकारों की नालियों में उलझ रहे थे। इसलिए कुछ तो मेरी ही रात तुमसे बढ़िया गई और कुछ तुम्हारे बराबरी की गई। सज्जनता का अंश रहा होगा उस युवराज में। बोले महाराज, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझ अभागे को ये दुर्भाग्यपूर्ण विलासिता नरकों में ले जाए वो मिली है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी समझ मिली है। महाराज ये समझ कहां से लाए? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। ये समझ सत्संग से मिली है। तुम इतना इकट्ठा करते हो फिर भी इतना निर्भीक सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी राजन उस महापुरुष की मधुमेह नेत्रों से खबर मिल रही थी कि पाया हुआ प्रभु को, प्रभुमय निगाहों से विलासी राजा के जीवन को भी करवट दिला देता है। एक महापुरुष हजारों कंगाल दिलों को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल खुशहाल कर देता है, जबकि 10 राजा मिलकर भी 10 आदमी को भी निहाल खुशहाल और परम पद के पथिक नहीं बना सकते। काहे की इतनी आपाधापी कर करके परेशान हो रहे? जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस चीजों को उस स्थिति को पा पाकर खो खो के मरे जा रहे। पतंगिया भागता है मजा लेने के लिए लाइट के आगे और अंत में सजा मिलती है। ऐसे ही सब विषय विकारों में मजा लेने को भागते, अंत में थक के निराश होकर खप जाते। इसी को बोलते हैं माया। मा या मा माना नहीं, या माना जो दिखे, इसको बोलते धोखा। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो मुझ परमेश्वर को, चैतन्य को, सच्चिदानंद को प्रपन्न होता है वो इस मेरी माया को तर जाता है। नजरिया कहाँ है? नश्वर पर है कि नश्वर की गहराई में छुपे हुए शाश्वत पर है? शत्रु पर है कि शत्रु के गहराई में छुपे हुए हितेशी पर है? मित्र के नाक पर नजर है कि ललना के गाल पर नजर है, कि ललुआ के गाल के ऊपर नजर है, कि ललुआ और ललना के अंदर रक्त वाहिनियों में जो सत्ता अधीश और अंतःकरण में है और वही तुम्हारे अंतःकरण में सुबह स्फुरित करता है, उसकी नजरिया है? बहुत कीमती समय है, व्यर्थ का नहीं गवाओ।